शमूएल की दूसरी पुस्तक अध्याय 3। शाऊल के वंश और दाविद के वंश के बीच लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। दाविद धीरे धीरे मजबूत होते चले गए और शाऊल का वंश लगातार दुर्बल होता चला गया। हेब्रोन वास के समय दाविद को ये पुत्र पैदा हुए। उनका पहलौठा था अम्मोन, जो येज़रील वासी अहिनोअम से पैदा हुआ था। उनका दूसरा पुत्र था किलियाब, जो कार्मेल वासी नाबाल की विधवा पत्नी अबीगैल से पैदा हुआ था। उनका तीसरा पुत्र था अबशालोम, जो गेशूर के राजा तालमाई की पुत्री माखा से पैदा हुआ था। उनका चौथा पुत्र था अदोनिया, जिसकी माता थी हेगीत। पांचवा पुत्र था शेपाथिया, जिसकी माता थी अबिताल। छठा पुत्र इथ्रियाम था, जिसकी माता थी दाविद की पत्नी एगला। ये सभी दाविद के हेब्रोन में रहते हुए पैदा हुए थे। अब्नेर की दाविद के प्रति वफादारी। जब शाऊल और दाविद के वंश के बीच संघर्ष चल रहा था, अब्नेर स्वयं को शाऊल के परिवार ही में अपना स्थान सशक्त बनाए जा रहा था। शाऊल की रिज़्पा नामक एक उपपत्नी थी, जो अय्या की पुत्री थी। ईशबोशेत ने अब्नेर का सामना करते हुए पूछा, तुमने मेरे पिता की उपपत्नी से संबंध क्यों बनाया है? ईशबोशेत के इन शब्दों को सुन अब्नेर को बहुत ही गुस्सा हो गए। उन्होंने ईशबोशेत को उत्तर दिया, क्या मैं यहूदिया के किसी कुत्ते का सिर हूँ? आज तक मैं तुम्हारे पिता शाऊल के परिवार, उनके भाइयों और उनके मित्रों के प्रति पूरी तरह सच्चा रहा हूँ और मैं तुम्हें दाविद के अधीन होने से बचाता रहा हूँ, और आज तुम मुझ पर इस स्त्री से संबंधित अपराध का आरोप लगा रहे हो। अब यदि मैं अब्नेर दान से बेशरबा तक फैले हुए शाऊल वंश के राज्य दाविद को दिए जाने और दाविद के इसराइल और यहूदिया पर सिंहासन की प्रतिष्ठा मिलने को, जिसकी शपथ यहावे द्वारा ली गई थी, पूरी ना करूं, तो परमेश्वर मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी बढ़कर करे। यह सुन ईशबोशेत अब्नेर से एक शब्द तक ना कह सका, क्योंकि वह अब्नेर से डरता था। अब्नेर ने दाविद के पास इस संदेश के साथ अपने दूत भेजे, कौन है इस भूमि का स्वामी? मुझसे वाचा बांध लीजिए और तब देखिएगा कि मैं अपने प्रभाव से सारे इसराइल को आपकी अधीनता में ला दूंगा। दाविद ने उन्हें उत्तर में यह संदेश भेजा, बहुत बढ़िया, मैं आपसे वाचा जरूर बांधूंगा, मगर एक ही शर्त पर, आप जब मुझसे भेंट करने आए, आप शाऊल की पुत्री मीखल को अपने साथ लाए, नहीं आप मेरा मुख ना देख सकेंगे। इसके बाद दाविद ने शाऊल के पुत्र ईशबोशेत के पास इस संदेश के साथ संदेशवाहक भेजे, मुझे मेरी पत्नी मीखल दे दो, जिसके साथ मेरा रिश्ता फिलिस्तीनियों की एक सोलिंग की खालों का मूल्य चुकता करने के द्वारा हुआ था। ईशबोशेत ने उसे उसके पति लाइश के पुत्र पालतियेल के पास से छीनकर दाविद के पास भेजी। इस पर उसका पति सारे रास्ते रोता हुआ उसके साथ साथ बहुरीम तक जा पहुंचा। उसे देख अब्नेर ने उसे आदेश दिया, जाओ अपने घर लौट जाओ। तब वह अपने घर लौट गया। अब्नेर ने इसराइल के पुरनियों की सभा आयोजित की और उन्हें संबोधित करते हुए कहा, बीते वर्षों से आपकी यह इच्छा रही है कि दाविद आप पर राजा होकर शासन करें, अब यही हो जाने दीजिए, क्योंकि यहावे ने दाविद से यह प्रतिज्ञा की है, मैं अपने सेवक दाविद के बाहुबल से, फिलिस्तीनियों के अधिकार से और सारे शत्रुओं से अपनी प्रजा इसराइल को छुड़ाऊंगा। अब्नेर ने बिन्यामीन गोत्र के लोगों से भी इस विषय का उल्लेख किया। इसके बाद अब्नेर हेब्रोन नगर में दाविद को यह बताने गया कि सारे इसराइली और सारे बिन्यामीन गोत्र के लोगों के मत में अब क्या करना सही है। जब अब्नेर 20 व्यक्तियों के साथ दाविद से भेंट करने हेब्रोन पहुंचे, दाविद ने अब्नेर और उन 20 व्यक्तियों के लिए एक भोज तैयार किया। अब्नेर ने दाविद से कहा, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जाकर सारे इसराइल को अपने स्वामी जो राजा है उनके सामने इकट्ठा करूं, कि वे आपसे वाचा स्थापित कर सकें कि आप उन पर अपनी इच्छा अनुसार उन सभी पर शासन कर सकें। तब दाविद ने अब्नेर को इसके लिए विदा किया और अब्नेर वहां से पूरी शांति से चले गए। योआब द्वारा अब्नेर की हत्या। ठीक उसी समय योआब के साथ दाविद के सेवक छापा मार करके लौट रहे थे, उनके पास लूटी गई सामग्री भी थी। उस समय अब्नेर दाविद के पास हेब्रोन नगर में नहीं थे, क्योंकि दाविद उसे विदा कर चुके थे। योआब और उनकी सारी सेना उनके साथ वहां लौटी, तब उन्हें सूचना इस प्रकार दी गई थी। नेर के पुत्र अब्नेर राजा से भेंट करने आए थे, राजा ने उन्हें पूरी शांति में लौटा दिया है। यह सुन योआब ने राजा के पास जाकर कहा, यह आपने क्या कर डाला है? जब अब्नेर आपके पास आया था, आपने उसे ऐसे ही छोड़ दिया, और अब वह आपके हाथ से बच निकला है। इतना तो आप समझते हैं कि नेर का पुत्र अब्नेर आपसे छल करने के उद्देश्य से यहाँ आया था। वह यहाँ आया था कि आपकी हर एक गतिविधि का भेद ले ले। दाविद की उपस्थिति से बाहर आकर योआब ने अब्नेर के पीछे अपने दूत दौड़ा दिए, जो अब्नेर को सीरा के कुंड के निकट से लौटा लाया, मगर दाविद को इसका कोई ज्ञान ना था। जब अब्नेर हेब्रोन पहुंचे, प्रवेश द्वारा के निकट योआब ने उन्हें अलग ले जाकर कुछ ऐसा दिखाया कि मानो वह उन्हें कोई गुप्त संदेश देना चाह रहे थे। उस स्थिति ही में योआब ने उनके पेट में घातक वार किया। योआब ने यह हत्या उसके भाई आसाहेल की हत्या का बदला लेने के लिए की। जब दाविद को इस घटना के विषय में मालूम हुआ, उनके वचन थे, नेर के पुत्र अब्नेर के वध के विषय में यहावे के सामने मैं और मेरा राज्य हमेशा निर्दोष रहेंगे। इसका दोष योआब और उसके कुल पर पड़े, वे स्राव रोग से कभी मुक्त ना हो, उसके पिता के कुल में कोढ़ी बने रहे और बैसाखी का उपयोग करने वाले हमेशा रहे, उसके कुल के पुरुष तलवार से घात किए जाए, उसके कुल में भोजन का अभाव बना रहे। योआब और उनका भाई अभिशाई अब्नेर की हत्या के दोषी थे। यह इसलिए कि अब्नेर ने गिबियोन के युद्ध में आसाहेल का वध किया था। इसके बाद राजा दाविद ने योआब और वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए आदेश दिया, अपने वस्त्र फाड़ दो, शोक वस्त्र पहन लो और अब्नेर के लिए विलाप करो। राजा दाविद अर्थी के पीछे पीछे गए। उन्होंने अब्नेर को हेब्रोन ही में गाड़ दिया। राजा ऊंची आवाज में रोते हुए अब्नेर की कब्र के पास खड़े रहे। वहां उपस्थित सभी लोग भी रोए। राजा ने अब्नेर के लिए इन शब्दों में शोक गीत गाया, क्या सही था कि अब्नेर की मृत्यु ऐसी हो जैसी एक मूर्ख की? अब्नेर, ना तो तुम्हारे हाथ बांधे गए थे और ना पांव में बेड़ियां डाली गई थी, फिर भी तुम्हारी मृत्यु ऐसी हुई जैसी किसी दुष्ट की। एक बार फिर लोग अब्नेर के शोक में रोने लगे। इसके बाद सभी लोग आकर दाविद से विनती करने लगे कि वह सूर्यास्त के पहले भोजन कर ले, मगर दाविद ने शपथ लेते हुए कहा, परमेश्वर मेरे साथ यही मगर इससे भी ज्यादा करें यदि मैं सूर्यास्त के पहले भोजन का सिर्फ स्वाद भी चख लूं। यह विषय सभी के ज्ञान में आ गया और इससे सभी प्रसन्न हुए। वस्तुतः राजा जो कुछ करते थे उससे सभी लोग प्रसन्न ही होते थे। उस दिन इज़राइल के सभी लोगों के सामने यह स्पष्ट हो गया कि राजा की यह इच्छा कभी ना थी कि नेर के पुत्र अब्नेर की हत्या की जाए। तब राजा ने अपने सेवकों को संबोधित करते हुए कहा, क्या आप लोग नहीं समझ रहे कि इज़राइल ने आज एक प्रशासक और एक असाधारण व्यक्ति खो दिया है? अभिषिक्त राजा होने पर भी आज मैं स्वयं को दुर्बल पा रहा हूँ। मेरे लिए ज़ेरूया के पुत्र बड़ी समस्या बन गए हैं। यहावे ही इन दुष्टों को उनके कुकर्मों के लिए सही बदला दें।